प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 1 जून यानी कि जून के महीने का प्रथम दिन 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और इसी के साथ ही स्वागत है साथ अपने उन विशेष नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं कुमार संगम भागलपुर से, सत्य प्रकाश त्रिपाठी गोरखपुर से, वीरेंद्र यादव दिल्ली से, कुंभा राम जालोर राजस्थान से, रेखा देवी हफीजपुर अमरोहा उत्तर प्रदेश से, राम रतन बेरवाल रेवाड़ी हरियाणा से और नंदा सरकार रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो कुमार संगम, सत्य प्रकाश, वीरेंद्र, कुंभाराम, रेखा, राम रतन और नंदा, आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और स्वागत के इस क्रम के बाद मित्रों, अब मैं बधाई देता हूं विशाल गुप्ता को जो गोरखपुर के हैं और हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले 2 दिनों से ये इस बधाई का यह सिलसिला जारी है और यह बधाई दी जा रही है उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम के प्री को क्वालिफाई करने के लिए। विशाल गुप्ता ने ये यूपीपीसीएस का प्री क्वालिफाई किया है। तो विशाल, मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, आपके बैचमेट्स की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपको इस सफलता के लिए बधाई देता हूं। और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको मेंस में और इंटरव्यू में वह सफलता दिलाए। आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में। और लाइफ मैनेजमेंट वाले पोर्शन में हम पिछले 2 दिनों से निगेटिविटी पर बात कर रहे हैं और यूं मान करके चलिए कि निगेटिविटी का आज यह अंतिम दिन है और आज इस टॉपिक को हम लोग पूरा कर लेंगे और इसलिए भी पूरा कर लेंगे, अदरवाइज तो बातें कितनी भी लंबी की जा सकती थी। निगेटिविटी पर तो एक अच्छी खासी 300-400 पेज की किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि नए विषय भी आप लोगों ने सुझाए हैं और फिर उन नए विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। जहां तक इस विषय की बात है तो मैं समझता हूं कि 3 दिनों तक इस पर लगभग एवरेज 10 मिनट तो बात की ही गई है और वो अपने आप में सफिशियंट भी होगा, जो आपकी अपनी जरूरत है उसके लिहाज से। दोस्तों, मैंने कल आपसे कहा था कि निगेटिविटी में देखना ये चाहिए कि कहीं कोई सत्य का अंश तो नहीं है, और यदि सत्य का अंश है तो फिर हमें उसे निगेटिविटी के रूप में न लेकर के उसे एक रियलिटी के रूप में लेना चाहिए, यथार्थ रूप में लेना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति आभारी होना चाहिए, आभार व्यक्त किया जाना चाहिए जिसने इसकी ओर इशारा किया है। और सच पूछिए तो उसने बताने का जोखिम भी मोल लिया है। मित्रों, मैं जानबूझकर जोखिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनी आलोचना कोई सुनना पसंद नहीं करता, कोई नहीं, अपनी गलतियों के बारे में कोई जानना पसंद नहीं करता। हम तुरंत ऐसे व्यक्तियों को कह देते हैं कि हमारा विरोधी है, ये हमसे ईर्ष्या करता है, कुछ भी इस तरह का हम नाम दे देंगे, उससे बोलना बंद कर देंगे, उसको उल्टा सीधा कहने लगेंगे, उसकी आलोचना करना शुरू कर देंगे कि भैया वो तो बड़ा निगेटिव थॉट्स का व्यक्ति है। जबकि दोस्तों, कबीरदास का अगर आपको दोहा याद हो, मैं इससे पहले दोहरा भी चुका हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कि बिना साबुन और पानी के ही वो आपके स्वभाव को निर्मल बना देता है। इसीलिए अपना आपकी जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको अपने पड़ोस में घर बना करके दे दीजिए और उसको बसाइए बस। तो दोस्तों, वो एक रियलिटी की बात है, राइट। लेकिन मैं जानता हूं कि यह साहस बहुत कम लोगों में होता है। सच बात तो यह है कि नहीं ही होता है, कम से कम मेरा तो यही अनुभव रहा है दोस्तों। मैं तो लगातार आप जैसे यंग लोगों से इंटरेक्ट करता रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करना, आप लोगों के बीच में रहना, आप लोगों के लिए कुछ भी कर पाना। और इसमें मेरा अपना स्वार्थ ही है कि आप लोगों के साथ रहने में मुझे भी कहीं ना कहीं युवा होने का एक भ्रम ही कह लीजिए कि भ्रम भी पैदा होता है, जो एक अच्छी बात है। भ्रम ही सही, लेकिन अगर अच्छे का भ्रम है तो क्या बुरा है। लेकिन मैंने महसूस किया है दोस्तों कि उतनी सहनशीलता उन युवाओं में नहीं होती कि वो आपकी किसी भी आलोचना को बर्दाश्त कर सकें। अगर आप किसी गलत की तरफ इशारा करें तो वो उसे स्वीकार कर सकें, ये खासकर होता है। तो मित्रों, फिर होता यह है कि कुछ समय के बाद जो कहने वाला है वो अपने को विड्रॉ कर लेगा, उसको क्या पड़ी है, क्यों वो बेकार के नाराजगी किसी की मोल ले। ठीक है भैया, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप अपने ढंग से देखिए, सोचिए हमको क्या लेना देना है। अब मित्रों, मैं उन चीजों पर आता हूं कि अगर एक निगेटिविटी का माहौल है तो अब आप उससे निपटेंगे कैसे, है ना। मैं अब उसके व्यावहारिक चीजों पर आता हूं। सैद्धांतिक बातें मैंने आपको बताई हैं और मैं किसी भी इशू को दोस्तों, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो, कितना भी बेकार सा क्यों ना लग रहा हो आपको, एकदम सामान्य सा हो, मैं शुरुआत सिद्धांत से ही करता हूं, क्योंकि हर चीज का एक सिद्धांत होता है, ये मेरी मान्यता है और सौभाग्यवश निकल भी जाता है उसमें से जरा से भी मैं कोशिश करता हूं। तो मित्रों, यहां जो मैं आप लोगों से सबसे पहली जो बात जो अर्ज करना चाहूंगा वो ये कि हमें ये जो निगेटिविटी का जो माहौल होता है, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कह लीजिए अपने इम्यून पावर को डेवलप करना चाहिए। देखिए, एक तो यह कि आप उस निगेटिविटी के खिलाफ खड़े हों, लोगों को डांटें, लोगों से झगड़ा मोल लें, लोगों को समझाएं, जो कुछ भी करें, ये तो उस माहौल के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो लगती है कि हम अपने दिमाग की, सोच की, विचारों की, व्यक्तित्व की, व्यवहार की, जो जो भी आप कह लीजिए, उनमें एक इम्यून पावर डेवलप करें। व्हाट डू आई मीन बाय इम्यून पावर? देखिए, आप अमेरिका से आने वाले व्यक्ति को आप अपने घड़े का पानी पिला दीजिए, अच्छे घड़े का पानी है आपका और हम लोग रोज पी रहे हैं, देखिए कि एक घंटे के बाद वो सुटुर सुटुर करने लगेगा, उसको हल्का हल्का फीवर हरारत होने लगेगी, फिर उसको फीवर आ जाएगा। मतलब वो घड़े के पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, यानी कि उसका शरीर इतना संवेदनशील है कि वो घड़े का पानी भी उसके लिए एक तरह से विषाक्त हो गया। इसका मतलब हुआ कि उसका इम्यून पावर बहुत कमजोर है। अदरवाइज हम तो रोज ही पी रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है, हम तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा इम्यून पावर काफी मजबूत है, स्ट्रांग है। इम्यून पावर का मतलब है कि जो पूरे के पूरे वातावरण में जो कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब जो फैले हुए हैं, ये लगातार हमारे शरीर पर अटैक करते रहते हैं। अब हमारे शरीर के पास इतनी कितनी ताकत है, इसका रक्षा कवच कितना मजबूत है कि वो इन अटैक्स को बर्दाश्त कर लेता है, परवाह ही नहीं करता। वो अटैक करते हैं और छिटक छिटक करके वापस चले जाते हैं। तो ये हमारे एक तरह से मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है दोस्तों, कि आपका अपना इम्यून पावर, जो मैंने थॉट, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, कंडक्ट इन सब के बारे में बताया, वो कितना मजबूत है। एक व्यक्ति है, उसे छोटी सी बात कह दीजिए वो डिप्रेशन में आ जाएगा, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसे कितनी भी बातें कहिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जिंदा दिली होती है, जिंदा दिली होती है, आपकी अपनी एक सुदृढ़ता होती है, मस्तिष्क की सुदृढ़ता होती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिन चीजों से आपको चोट पहुंच रही है, जिन चीजों से आपको एक तरह से धक्का लग रहा है ना, मन खराब हो रहा है, देखिए कि वो किन चीजों के बारे में कहा गया है और उन चीजों को फिर आप ऑब्जर्व कीजिए, इवेलुएट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, और फिर अपनी उन कमजोरियों को आइडेंटिफाई करने के बाद उन कमजोरियों से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर जब कोई कहेगा तो आप देखेंगे या तो वो कहना ही बंद कर देगा, क्योंकि अब उसे उसमें आप में वो चीज दिखाई दे ही नहीं रही है, आपने उन कमजोरियों से छुटकारा पा लिया, वो कहना बंद कर देगा। या अगर वो कहना बंद नहीं भी करेगा, कहेगा भी और कहता ही रहेगा, तो आप देखेंगे कि आप उसे हंस के उड़ा देने की हिम्मत जुटा लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उनके कहने को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप सांची के स्तूप में जाएं तो वहां एक स्तंभ पड़ा हुआ है और लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस स्तंभ में अभी तक जंग क्यों नहीं लगा, ये खराब क्यों नहीं हुआ। एक पत्थर का स्तंभ है, उसकी चिकनाहट आज तक खत्म नहीं हुई है। इतने सालों से, समझिए कि लगभग 2000 सालों से बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रही है, कण टकरा रहे हैं, लेकिन उसकी चिकनाहट खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि उसने अपने को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि ये बाहरी जितने भी प्राकृतिक स्थितियां हैं उस पर कोई प्रभाव डाल नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि हम काफी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं अपने को मजबूत बनाने के बनाकर। मित्रों, फिर एक चीज मुझे खासकर एस हर कोई के बस की ये बात नहीं होती, कुछ लोग कुछ सीमा तक कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते, कुछ लोग पूरी सीमा तक कर लेते हैं। तो एक बात और की जा सकती है जो सबके लिए आसान नहीं होता है कि दोस्तों, जहां भी इस तरह के का निगेटिव एटमोसफियर हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम खुद को उस वातावरण से हटा ले? एक ऐसा भी हो सकता है, मुझे लगता है, लेकिन वो उतना आसान नहीं है। अगर इस तरह की निगेटिविटी हमारे घर वालों के द्वारा ही फैलाई जा रही है, जैसे मान लीजिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तुम बेकार में लगे हुए, फालतू अपना समय खराब कर रहे हो, किसी की बात सुनते नहीं, इस तरह के जब लगातार आप बातें सुनेंगे तो दिमाग में तो निगेटिविटी आती है, व्यक्ति डिमोरलाइज भी होता है। और मुश्किल ये है कि आप यहां से अलग भी होकर के कहीं नहीं जा सकते, घर छोड़कर कहां जाएंगे, तो इस वातावरण को तो बदलना मुश्किल होता है। लेकिन और भी बहुत से आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनके लिए वातावरण बदलना बहुत आसान होगा। मान लीजिए कि आप किराए का मकान लेकर के कहीं रह रहे हैं, वहां का माहौल अच्छा नहीं है। देखिए, निगेटिविटी का मतलब केवल सेंटेंस से ही नहीं होता है ना, कि कोई कुछ बोल रहा है वही निगेटिविटी है। निगेटिविटी अपने आप में एक पूरा का पूरा माहौल भी होता है। देखिए, जो बात कही जाती है, वैज्ञानिकों ने कहा भी है, मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद आइंस्टीन ने भी ये बात कही थी कि जो वस्तुएं होती हैं उनसे भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। जैसे ऐसी चीजें जो सड़ गई हैं, गल गई हैं, ऐसी चीजें जो कभी यूज ही नहीं की जा रही हैं, तो ये माना जाता है कि उनसे निगेटिव एनर्जी निकलती है। अब वो हमें दिखाई नहीं दे रही, न तो साउंड के फॉर्म में है, न दृश्य के फॉर्म में है, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर थोड़ा सा खराब पड़ता है। जबकि जो बड़ी जीवंत वस्तुएं होती हैं, उपयोगी वस्तुएं होती हैं, सुगंधित वस्तुएं होती हैं, आंखों को अच्छी दिखने वाली वस्तुएं होती हैं, उनसे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी लगातार निकलती रहती है। तो बट नेचुरल है कि हम ऐसे इस स्थिति में अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल का रास्ता तो चुन ही सकते हैं। हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव माहौल में आपको लेकर जाएं, अपने आप को लेकर के जाएं। आप देखते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं या किसी बहुत ही खुले प्राकृतिक स्थान में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, फूलों के उद्यान में जाते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो सौंदर्य है, वहां के हर सौंदर्य से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अगर हम ज्यादातर समय में निगेटिव माहौल में रह रहे हैं तो किसी तरह से कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में चले जाएं। यूं कह लीजिए कि वहां से अपने लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर भर करके ले आएं और फिर इस निगेटिव को बर्दाश्त करने की थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, फिर थोड़े समय में पॉजिटिव में चले जाएं। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे कुछ व्यावहारिक बातें, इनफीरियर जो निगेटिव जो एनर्जी होती है उसको बर्दाश्त करने, उसको सही करने के लिए बताने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने कहा कि विषय तो बहुत बड़ा है और आप लोगों से मुझे कुछ इस तरह के और ज्यादा फीडबैक भी नहीं मिले कि किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेकर के इस पर मैं और अधिक बात कर सकूं। इसलिए अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। फिर बाद में और भी नए लोग आएंगे आप लोगों की, अगर इसी से रिलेटेड कोई नई समस्या होगी, फिर आप जब इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको फिर बताया जाएगा। तो फिलहाल इसे यहीं समाप्त करते हैं, कल से फिर अपन किसी नए इश्यू पर, नए विषय पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कल के AIR न्यूज पर। देखिए एक दो खबरें हैं, ज्यादा खबरें तो नहीं है, और सच पूछे तो एआईआर न्यूज में होता भी यही है, जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं सिविल सर्विस के लिहाज से वो एक दो ही होती हैं, बाकी तो ठीक है, सपोर्टिंग न्यूज रहती है, चूंकि उनको 15 मिनट की न्यूज तैयार करनी है और इतना बड़ा हमारा देश है तो खबरें हो जाती मिल जाती हैं, लेकिन हर नागरिक जाने और हर खबर इंपॉर्टेंट हो ये जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं एक दो खबरों को लेकर के खास बातें करना चाहूंगा। एक जो छोटी सी खबर है पहले इस पर बात करके इसे पूरा कर दे ताकि दूसरी खबर पर हम लोग ज्यादा समय लगा सके। मित्रों आपने देखा कि महाराष्ट्र में वर्धा जिले का एक जो गांव है, एक जगह है पुलगांव, वहां आर्मी का एक डिपो था जिसमें अग्नि आग लग गई, अग्निकांड हो गया और जिसमें कई लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई और काफी एमुनेशन जो हमारा तोप गोला बारूद था ये भी उसमें नष्ट हुआ। कारणों का अभी पता नहीं लगा है, इसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर कोई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि ये आपदा प्रबंधन का एक हिस्सा है। आपदा प्रबंधन इस मायने में कि देखिए आपदा प्रबंधन दो तरीके की होती है। पहला तो ये है कि आपदा आने के बाद फिर आप उसका प्रबंधन करते हैं कि संकट आ गया और फिर हम उसका प्रबंधन कर रहे हैं। दूसरा ये होता है मित्रों कि संकट आने से पहले ही हम कुछ व्यवस्थाएं करके रखते हैं। इसमें आप देखिए कि संकट पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ अब ये पता लगेगा। अलग अलग बातें की जा रही हैं, हो सकता कुछ कहते कि वहां पत्तियां गिरी थी तो उसमें कहीं चिंगारी लग गई होगी, कि किसी का कहना है कि किसी ने हो सकता है कि आग मतलब बीड़ी वगैरह सुलगा करके और डाल दी हो और उससे वो फैलती चली गई हो। शॉर्ट सर्किट के बारे में अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है। तो सिचुएशन यह है कि मान करके चला गया है कि भाई ऐसी चीजें यहां घट सकती हैं। आप देखेंगे कि घरों में भी खासकर फायर के लिए पहले से प्रबंध किया जाता है कि अगर घर में अचानक आग लग गई तो आप क्या करेंगे। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में तो खासकर आप देखेंगे कि अग्निशमक समन यंत्र लगाए जाते हैं। तो बड़े बड़े जहां फंक्शंस होते हैं वहां ठीक है फंक्शन सब अच्छी तरीके से निपट जाएंगे, लेकिन वहां भी पहले से ही व्यवस्था की जाती है कि बाय द वे यदि ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सभी जगह की जाती है। तो इसमें भी आप देखिए कि काफी कुछ व्यवस्थाएं की भी गई थी और उसी का ही नतीजा हुआ कि केवल एक ही शेड पे एक ही डिपो में आग लग करके सिमट करके रह गई और तुरंत सारी चीजों को कंट्रोल में ले लिया गया। बस अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि इसमें काफी लोगों की डेथ हुई, ये एक बहुत ही इसका दुखद हिस्सा रहा। लेकिन मित्रों ये भी होता है कि अगर ये सारी व्यवस्था नहीं की जाती हो नहीं की गई होती तो पता नहीं ये बात और ये जो है और अपना कितना बलिदान ले लेती, कितने लोगों को हवन कुंड में डाल देती, कितने लोगों को बर्बाद कर देती, कौन जानता है। आसपास के गांव है, आग फैलती चली जाएगी, फिर विस्फोट होने लगेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो विस्फोट हुआ है इस तरह की जो जगह होती है इनको कंट्रोल कैसे किया गया, किस तरह से पहले से व्यवस्था की जाती है। 2013 में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो आपदा प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसकी पूर्व भूमिका होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए। तो ये आपदा पूर्व का जो प्रबंधन होता है उससे रिलेटेड ये इश्यू है। और जब इस पर कोई अभी हो सकता है कि एडिटोरियल कमेंट आए, आज एक एडिटोरियल कमेंट है भी टाइम्स ऑफ इंडिया का, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, या फिर लेख आएंगे इसकी रिपोर्ट्स आएगी तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मित्रों जो दूसरी खबर थी और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी कल के न्यूज की आप कह लीजिए, वो थी खासकर हमारे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में। आपने न्यूज सुनी कि चौथी तिमाही, देखिए अब मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पर बात करूंगा। दोस्तों आपको मालूम है कि जो इकोनॉमिक्स, हालांकि इसे सीधे सीधे इकोनॉमिक्स नहीं कहना चाहिए, हमारे देश के इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर, हमारे देश पर भी और इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उस पर क्वेश्चन, उस पर पूरा का पूरा एक पेपर आपका बना हुआ है जो थर्ड पेपर है, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर है। प्री में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ये आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का इकोनॉमिक्स, राइट। एक अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से, आप देखेंगे वो किताब से नहीं है, किताब से आपसे नहीं पूछा जाएगा कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या था, भारत में वह किस तरीके से अप्लाई होता, इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे। ग्रेसम लॉ नहीं पूछा जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उत्पादन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, वो बिल्कुल अलग चीज है। अब जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जाता है कि अभी जो सारा सिनेरियो चल रहा है वो क्या है। अब सवाल ये है कि ये जो सिनेरियो चल रहा है, आज की देश की जो आर्थिक स्थिति है, उपलब्धियां हैं, कमियां हैं, समस्याएं हैं, जो कुछ भी है, जो करंट सिचुएशन है, इस करंट सिचुएशन को आप समझेंगे कैसे, कैसे आपकी पकड़ में चीजें आएंगी। और जब तक समझेंगे नहीं, जब तक चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, तब तक आप इनका विश्लेषण कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप न्यूज में हमारी आर्थिक स्थितियों से संबंधित कोई एक महत्वपूर्ण खबर सुनते हैं, तो आपको चाहिए कि अगर उसमें से कुछ शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे तो उन शब्दों को समझने की कोशिश करें कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, फिर उससे रिलेटेड चैप्टर को किताब में से देखें और उस चैप्टर को पढ़ करके, और चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर न्यूज में जो बात कही गई है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, मैं अगर ये कह रहा हूं कि माल्थस और ग्रेसम लॉ पर नहीं पूछा जाएगा, रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत नहीं पूछा जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर किताब आपके लिए बेकार है। किताब बेकार नहीं है, क्योंकि इस सिनेरियो को आप बिना किताब के सहायता के समझ ही नहीं सकते। किताब तो मस्ट है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। वो एक नाव की तरह है जिसमें बैठकर आप सफर करते हैं, और जब आपका सफर पूरा हो जाता है तो उसे किनारे कर देते हैं नाव को, और फिर आगे की यात्रा पैदल शुरू करते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है वो उस नाव की तरह है जो केवल विषय को समझने में आपकी मदद करेगा, बस। वहां न तो रटने की बात है कि आप इकोनॉमिक्स को कुछ रट रहे हैं, और न कुछ ऐसा है कि आपको याद रखना है या उस पर नोट्स बना रहे, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप कोई भी अच्छी सी इकोनॉमिक्स की किताब लेकर के, अच्छी सी का मतलब जो बेसिक्स को अच्छे से समझा रहा हो, बस उनके बेसिक्स को समझ लीजिए, और फिर उसे अभी की जो न्यूज है या जो न्यूज आइटम्स आप पढ़ रहे हैं या एडिटोरियल कमेंट आप पढ़ रहे हैं उस पर अप्लाई करिए, और वहां से लाइनें ले लेकर के समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कल जो आपने न्यूज में कुछ चीजें सुनी, जैसे सबसे पहले तो यह आ गई चौथी तिमाही। तो ये चौथी तिमाही क्या है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि आप सबके दिमाग में क्लियर ही होगा। एक साल में चार तिमाही होते हैं, 3 × 4 = 12 मंथ, तो 3 महीने हो गया लास्ट। उसमें जो वृद्धि दर रही है वो 7.9% रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वृद्धि दर है ये क्या है, आर्थिक वृद्धि दर, और इस आर्थिक वृद्धि दर का कैलकुलेशन कैसे होता है। मतलब ये नहीं कि आप बहुत हायर मैथमेटिक्स में चले जाएं, एक इंप्रेशन होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर इतनी है तो उसका क्या अर्थ हुआ, क्या इसका कोई संबंध ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से है, क्या इसका कोई संबंध हमारे कुल आय से है, क्या हमारा इसका कोई संबंध आयात निर्यात से है, वृद्धि दर का फार्मूला क्या होता है, एक सामान्य सी समझ तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और फिर यह भी होना चाहिए कि जब हम भारत में आर्थिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो इनमें किन किन क्षेत्रों को लेते हैं, कृषि है, उद्योग है, और फलाने फलाने हैं, सेवा क्षेत्र है, क्या क्या है, ये आपकी समझ में होनी चाहिए। तो आप देखिए कि जब आप वृद्धि दर को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका ये चैप्टर कितना फैल करके आपको एकदम इक्विप्ड कर देगा, आपकी तैयारी करा देगा। फिर आपने देखा कि इसमें दो तीन शब्द और आए। एक आया कि विनिर्माण क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की की है, और आया कि 9.3% विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब एवरेज तो हमारी 7.9 है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि यह विनिर्माण क्षेत्र क्या है, किसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, इनमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, इससे पहले क्यों इसमें वृद्धि नहीं हो रही थी, अभी ऐसा क्या क्या हो गया कि इस लास्ट चौथी तिमाही में कि इसमें इतनी ज्यादा वृद्धि हुई। अब ये सब न्यूज में नहीं बताए जाएंगे, हो सकता है कि कोई इकोनॉमिस्ट इस पर आर्टिकल लिखे और फिर वो इन चीजों का खुलासा करे कि विनिर्माण क्षेत्र में क्यों इतनी वृद्धि हुई है, इशारा किया गया है न्यूज में भी, लेकिन आपकी पकड़ में होनी चाहिए। उनकी पकड़ में तो खासकर होनी चाहिए जो अभी दिसंबर के मेंस में बैठेंगे, लेकिन याद रखिए कि अगर आप अभी तो आपको नहीं मालूम है कि आप मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, है ना, आप एक प्रिज्यूम करके चलते हैं कि नहीं हमारी तैयारी अच्छी है, हमारे पेपर अच्छे बनेंगे, तो हो सकता है कि हम मेंस में बैठें। लेकिन जब आप मेंस में बैठेंगे तब तक ये चीज छूट चुकी होगी, ये चीज गायब हो चुकी होगी, ये पानी बह करके आगे पहुंच चुका होगा। तो तैयारी तो आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, दिमाग में आपके इम्प्रेशन बना करके चलना पड़ेगा कि भाई ये विनिर्माण क्षेत्र में हम धीरे धीरे ठीक ठाक कर रहे हैं। दूसरा, देखिए न्यूज में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई, जो एक थोड़ी सी आश्चर्य की भी बात है लेकिन सत्य है, वो ये है कि कृषि क्षेत्र, यही न्यूज में आपने सुना कि ये जो हमने वृद्धि हासिल की 7.9, आप देखिए कि हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो 7.5 to 8% का, तो हम 7.9 तो पहुंच ही गए। ये लास्ट ठीक है क्वार्टर में हुआ है, पूरे उसमें नहीं हुआ, आप देखिए कि एनुअल क्या रहता है हमारा। तो कृषि क्षेत्र में जो हमने वृद्धि दर हासिल की है वो 2.3 की है। जबकि यहां पर फिर आप कुछ चीजों को दोहरा सकते हैं, अपने दिमाग में ला सकते हैं, आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। वो रिवीजन इस तरीके से होगा फ्रेंड्स कि जो 5-year प्लान हमारे जो बने थे उसमें हमने कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को 4% एक्सपेक्ट किया है। एक्सपेक्ट क्या कहें, एक उद्देश्य बनाया, टारगेट बनाया है, उससे तो हम बहुत कम है, लगभग आधे हैं, 2.3% ही हैं। लेकिन चूंकि इससे पहले बहुत कम होता था और फिर आप देख रहे हैं कि कितने सूखे की चीज, पिछले बार कहीं कितनी जगह पर सूखा पड़ा, उसको देखते हुए 2.3% एक अच्छी वृद्धि दर की कही जा सकती है। तो अब आपके दिमाग में एक फैक्ट रजिस्टर्ड हो गया कि यार हमारा जो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर है वो 2.3% के आसपास है और इसमें अभी बढ़ाए जाने की बहुत गुंजाइश है। और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आप फिर से याद करने की कोशिश कीजिए कि सरकार और क्या क्या कर रही है, कृषि सिंचाई योजना बना रही है, फसल बीमा योजना, तो एक बार फिर से आप उन्हें इसी बहाने दोहरा लेंगे। तो मित्रों, इस तरह से इकोनॉमिक्स की तैयारी आपकी लगातार अच्छी होती चली जाएगी और फिर आप देखेंगे कि जर्नलिस्ट का थर्ड पेपर आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। यहां मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा आपसे फ्रेंड्स, वो ये कि जब आप न्यूज सुन रहे थे तो आपने देखा कि उसमें बहुत से डेटा की बात थी, है ना, दुनिया भर के कुछ आंकड़े बताए गए। आप इन आंकड़ों के मकड़ जाल में मत फंसिएगा। बहुत से स्टूडेंट इसके मकड़ जाल में फंस जाते हैं और वो स्टूडेंट होते हैं जो जिनको इकोनॉमिक्स की रियल में समझ नहीं है। अदरवाइज आपको बहुत केवल इंपॉर्टेंट आंकड़े जानने हैं, दैट्स ऑल। अब ये बात अलग है कि आप कह सकते हैं कि सर अब हम ये कैसे जाने कि कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये जो आपकी समस्या है, ये समस्या मैं जरूर इससे एग्री करता हूं मित्रों, लेकिन ये तो आप केवल तभी जान सकते हैं जब आप इकोनॉमिक्स की बेसिक्स को समझ लें, तब आपको खुद समझ में आएगा कि इससे आपका काम चल जाएगा। अब ये मैं आपको डेली आरडीओ में नहीं बता सकता मित्रों, क्योंकि इस डेली आरडीओ का देखिए अपना एक करेक्टर है जो करंट बेस्ड होता है। मेरे पास और भी मेल्स आते हैं स्टूडेंट के कि आप हिस्ट्री पर बताइए, कुछ ऑप्शनल पर बताइए, मैं उनसे क्षमा याचना करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इस डेली आरडीओ का जो करेक्टर है वो करंट अफेयर पर बेस्ड है, न्यूज और न्यूज पेपर पर बेस्ड है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं करंट अफेयर्स और न्यूज को बेस बना करके कुछ टॉपिक की बेसिक्स आप लोगों को बता सकूं। और मित्रों, उसी की क्षतिपूर्ति के लिए, कह लीजिए क्षति तो नहीं कहूंगा, उसी को कंप्लीट करने के लिए 15 दिन की क्लासेज है जिसमें कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बेसिक्स स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश की जाती है। राइट फ्रेंड्स, ये जो इकोनॉमिक्स पर जो आपने न्यूज सुनी, इसी से रिलेटेड आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है बिजनेस स्टैंडर्ड में। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका टाइटल है देश में रोजगार संकट की क्या है वजह, कि हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। इसमें देखेंगे आप जिनकी हमने अभी चर्चा की ना, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, फिर सेवा क्षेत्र, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि संकट क्या हो रहा है। हम 7.9% की वृद्धि दर तो हासिल कर रहे हैं लेकिन हम रोजगार बिल्कुल भी उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखेंगे मित्रों कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको 2014 के दो क्वेश्चन बता रहा हूं, 2014 के जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर के दो क्वेश्चन बता रहा हूं जल्दी से। आप देखें कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस जो मैं आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, इसमें आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं, पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल समृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तब आप इसके उत्तर देने के लायक बन जाएंगे सिर्फ इसी आर्टिकल में। इसके बाद देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है, वे जॉब कहां से आएंगे, स्पष्ट कीजिए। आप देखेंगे कि ये दोनों प्रश्न कितने व्यावहारिक किस्म के प्रश्न हैं। यहां आपको आंकड़ों की जटिलता नहीं चाहिए, यहां आपको अर्थशास्त्र के बहुत ज्यादा सिद्धांतों की जरूरत नहीं है। अगर आपको भारत की आर्थिक स्थिति की समझ है, तो आप बड़े आराम से इसके आंसर बड़े प्रैक्टिकल लेवल पर दे सकते हैं और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जनरल स्टडीज का प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न नहीं है। फ्रेंड्स, एक तीसरी जो खबर थी वो नौसेना प्रमुख जो हमारे अभी बनाए गए हैं सुनील लांबा जी, 21वें नौसेना प्रमुख हैं। हालांकि आज अब के जनरल स्टडीज में इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है, फिर भी चूंकि वो हमारे नौसेना प्रमुख हैं, तो एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते हम सबको जानना ही चाहिए, तो ये एक खबर थी। फ्रेंड्स, AIR न्यूज से इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर से। मैंने एक बात की कि टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं पुलगांव पर जो घटना हुई है उस पर एक बार आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल मैं दे ही रहा हूं। फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक आर्टिकल है जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने सिविल सोसाइटीज पर एक आर्टिकल लिखा है, ठीक ठाक है, एक अच्छा है, कुछ अच्छे प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने सरकार का पॉइंट रखा है खासकर सिविल सोसाइटीज को लेकर के, तो ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। चूंकि वक्त नहीं है मैं इसके लिए आपको कुछ बता सकूं, तो ये आपको अवेलेबल रहेगा। और खासकर एक आर्टिकल का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, ये हिंदू का आर्टिकल है और खासकर ओल्ड एज के हमारे जो लोग हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि भारत में अब धीरे धीरे ओल्ड एज के लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। जापान और चाइना में तो ऑलरेडी ये होने लगा है, ग्रीस जैसे देशों में होने लगा, तो भारत भी धीरे धीरे उधर बढ़ रहा है। और एक 2013 में वृद्ध जनसंख्या पर सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसको देखते हुए ये मुझे आर्टिकल बहुत अच्छा लगा है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और आपको ये भी इंश्योर कर रहा हूं कि आप इसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए, बाद कुछ समय के बाद आपको इसका हिंदी वर्जन, एग्जैक्ट हिंदी मतलब अनुवाद नहीं, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको करेंट कंटेंट के अंतर्गत पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको इसे भी पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आप ये लिबर्टी मत ले लीजिएगा कि चूंकि अब हिंदी में तो आ ही रहा है तो हम उसी से देख लेंगे। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर हिंदी में जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसे आप ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर से और भी दूसरे आर्टिकल्स हैं वो आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत आभार। एक मेल मुझे मिला है गुलरेज अंसारी का, जो अपने दोस्त के साथ कोचिंग सेंटर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए लड़कों को गाइड करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके पास लगभग 200 लड़के हैं और वो जो ये डेली ऑडियो गाइडेंस इसका लाइफ मैनेजमेंट वाला हिस्सा रोज अपने स्टूडेंट्स को सुनवाते हैं और स्टूडेंट्स इसे बहुत पसंद करते हैं। तो गुलरेज जी, इसके लिए बहुत, और आपको और आपके दोस्त को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एकेडमी की तरफ से बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप और भी दूसरे लोगों को इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। और मित्रों, सच पूछे तो मैं गुलरेज जी के ही माध्यम से इसी बहाने भी कह लीजिए कि मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से ये गुजारिश करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी अपने अपने लेवल पर, चाहे वो एक ही को क्यों ना बताएं, इस तरह की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डेली ऑडियो के प्रति आकर्षित हो सकें। क्योंकि मित्रों, मुझे लगता है कि ये उनके सिस्टम को, खासकर जो पढ़ने लिखने का सिस्टम है, इसको बदल करके, और केवल सिविल सर्विस की बात नहीं है, वो जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक इसका पॉजिटिव रोल हो सकता है और यहां तक कि लाइफ में भी एक पॉजिटिव रोल हो सकता है। तो इस अच्छे काम के लिए अगर आप लोग अच्छा समझते हैं तो मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, और आप सब अपना सहयोग मुझे उसी तरीके से दे सकते हैं जैसे कि गुलरेज अंसारी दे रहे हैं। गुलरेज आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों कुछ दोस्तों के और मैं नाम लेना चाहूंगा, उसमें है मनीषा पुणे से, विवेक वारसालीगंज बिहार से, ज्ञानेश्वर सुधाकर मोरे जलगांव महाराष्ट्र से, अवतार सिंह ढिल्लन, डॉक्टर अभिजीत उमेश बड़शील या नैनीताल से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से और वीरेंद्र यादव नई दिल्ली से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।